नमस्कार भारत, आज है तारीख 24 जून, दिन रविवार। मेरा नाम है मोहम्मद शाहिद। इटली के कहने के बावजूद भूमध्य सागर में फंसे 226 शरणार्थियों को माल्टा ने स्वीकार करने से किया इनकार।
Is widely perceived that it can go on forever like this. We gave all these people a wrong message.
आज से उत्तराखंड में एडवेंचर स्पोर्ट्स पर होगा प्रतिबंध, पर्यटकों और कारोबारियों में नाराजगी।
टूरिस्ट आ रहे हैं, कोई 1000 किलोमीटर से आ रहा है, कोई 500 किलोमीटर से आ रहा है। आने के बाद बोल रहे हैं कि राफ्टिंग बंद हो गई है, बिजनेस या तो पहले नोटिफिकेशन जारी करनी चाहिए थी। आप इतने टूरिस्ट, इतने परेशान हैं हम।
इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत और झारखंड से होंगी विशेष रिपोर्ट और खेल समाचार भी, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार नवीन नेगी से। प्रवासियों को लेकर आ रहे जहाज द लाइफलाइन को अपने देश में प्रवेश करने से रोकने और उस पर इटली की तरफ से की गई निंदा पर माल्टा के प्रधानमंत्री ने कहा है कि इटली के पास कोई अधिकार नहीं है कि वे माल्टा से कहें कि उन्हें प्रवासियों को रखना चाहिए या नहीं। माल्टा के प्रधानमंत्री जोसेफ मुस्कैट ने कहा कि उनका देश एक संप्रभु राष्ट्र है और किसी अन्य देश को उन्हें निर्देश देने का हक नहीं है। लीबिया से 226 प्रवासियों को लेकर आया द लाइफलाइन जहाज अपने लिए तट की तलाश कर रहा है। जिम्बाब्वे में एक चुनावी रैली के दौरान राष्ट्रपति इमरसन मननगागवा एक धमाके का शिकार होने से बाल बाल बच गए। बुलावायो शहर में एक रैली को संबोधित करने के बाद जब राष्ट्रपति मंच से उतर रहे थे तब उनसे कुछ इंच की दूरी पर एक धमाका हुआ। इस धमाके में जिम्बाब्वे के उपराष्ट्रपति कैम्बो मोहादी घायल हो गए हैं। राष्ट्रपति ने इसे उनकी हत्या की साजिश करार दिया है। राष्ट्रपति इमरसन मननगागवा ने कहा, ऐसी बहुत सी कोशिशें पहले भी हो चुकी हैं, यह मेरी जिंदगी में कोई पहली बार नहीं हुआ है। मेरे लिए तो यह सामान्य सी बात हो गई है। यह धमाका मुझसे कुछ इंच की दूरी पर हुआ लेकिन इस बार मैं बच गया। ये थे जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति के शब्द। इथोपिया के प्रधानमंत्री एबी अहमद की रैली में हुए ग्रेनेड हमले के सिलसिले में पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया है। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी जबकि 165 लोग घायल हुए थे। वेल्स में स्थित कार्डिगन खाड़ी के अधिकारियों ने लोगों को चेतावनी दी है कि वे जंगली डॉल्फिन से दूरी बनाकर रखें। दरअसल इस तट पर एक महिला डॉल्फिन के बेहद नज़दीक तैराकी करती हुई देखी गई थी। इस इलाके के मरीन कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार लोगों को डॉल्फिन से कम 100 मीटर की दूरी बनाकर रखनी ज़रूरी है। एक बोट ट्रिप संचालक जोनाथन इवांस ने कहा,
We watched the turned out to be the mother swimming repeatedly towards the dolphin. The dolphin was actually.
हमने देखा कि एक महिला तैराकी करते हुए लगातार डॉल्फिन के नज़दीक जाने की कोशिश कर रही थी, जबकि वह डॉल्फिन दूसरी दिशा में जा रही थी। हालांकि उस महिला को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा, लेकिन यह खतरनाक है। ये थे एक बोट ट्रिप संचालक के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रवासियों के मसले पर अपनी नीतियों का यह कहते हुए बचाव किया है कि इससे अमरीका अधिक मजबूत होगा। लास वेगास में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अमरीका के प्रवासन कानून अभी हास्यास्पद हैं और यहां लाखों प्रवासी रह रहे हैं। कई आलोचक ट्रंप की प्रवासियों के प्रति कड़े रुख की आलोचना करते रहे हैं। सीरिया में मौजूद कार्यकर्ताओं का कहना है कि पिछले साल हुई युद्ध विराम संधि के बाद पहली बार देश के दक्षिण पश्चिमी इलाके में रूसी जेटों ने बम बरसाए हैं। ब्रिटेन सहित सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स का कहना है कि डरा प्रांत में लगभग 25 हवाई हमले किए गए हैं। इस इलाके में सीरियाई सरकार और विद्रोहियों के बीच संघर्ष चल रहा है। सऊदी अरब महिलाओं को ड्राइविंग की इजाज़त देने वाला दुनिया का अंतिम देश बन गया है। बीती रात से सऊदी अरब में महिलाओं पर लगा ड्राइविंग का प्रतिबंध हटा लिया गया। इसे सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के अपने देश को आधुनिक बनाने के एक बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि लगभग 30 लाख महिलाएं इस आज़ादी का फायदा उठा सकेंगी। फुटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय संस्था फीफा ने स्विट्जरलैंड के उन 2 खिलाड़ियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है जिन्होंने सर्बिया के खिलाफ मैच में गोल करने के बाद अपने हाथों को क्रॉस करते हुए अल्बानिया के 2 सिर वाले बाज का प्रतीक बनाया था। ग्रेनेट शाका और शेरदान शाकिरी नामक ये खिलाड़ी कोसोवो मूल के हैं और इनके परिजन कोसोवो से निकलकर स्विट्जरलैंड चले गए थे। वहीं सर्बिया फुटबॉल एसोसिएशन के प्रमुख स्लाविया कोकेज ने फीफा पर आरोप लगाए हैं कि उनके अधिकारियों ने मैच के दौरान सर्बिया के खिलाफ काम किया। यह मैच स्विट्जरलैंड ने 2-1 से जीता था। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत है। इसका सीधा प्रसारण आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक पर भी सुन सकते हैं और मैं हूं मोहम्मद शाहिद। लगभग पिछले 3 दिनों से भूमध्य सागर में फंसे 226 प्रवासी मदद का इंतजार कर रहे हैं। जर्मनी की एक सहकारी संस्था के जहाज में सवार इन प्रवासियों की पहले ही इटली मदद करने से इनकार कर चुका है। इटली ने माल्टा को इनकी मदद करने को कहा है लेकिन उन्होंने भी इस पर ना कह दिया। बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्टों का सार सुनिए नवीन नेगी से।
लीबिया से गुरुवार को 226 प्रवासियों को लेकर चला जर्मनी का जहाज द लाइफलाइन अभी भी अपने लिए एक सुरक्षित तट की तलाश कर रहा है। माल्टा ने इन प्रवासियों को अपनी सीमा में आने से इनकार कर दिया था। माल्टा के इस फैसले की इटली ने निंदा की। इटली के गृह मंत्री मैटियो सेल्विनी ने कहा कि माल्टा को इन प्रवासियों को अपने इलाके में शरण देनी चाहिए। वहीं माल्टा के प्रधानमंत्री जोसेफ मुस्केट ने इटली को जवाब देते हुए कहा है कि इटली को कोई अधिकार नहीं है कि वह उनके देश को यह समझाए कि उन्हें प्रवासियों को रखना है या नहीं। जर्मन चैरिटी संस्था लाइफलाइन ने शनिवार को बताया कि उनका जहाज माल्टा के दक्षिणी हिस्से वाली अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा पर मौजूद है। इससे पहले पिछले हफ्ते भी लगभग 600 प्रवासियों को लेकर आया जहाज एक्वारिस कई दिनों तक बीच समुद्र में रुके रहने को मजबूर रहा था क्योंकि उस समय भी इटली और माल्टा ने उसे अपनी सीमा में प्रवेश करने से रोक दिया था। प्रवासन के मुद्दे पर कड़ा रुख रखने वाली इटली की सत्ताधारी लीग पार्टी के सदस्य क्लॉडियो बॉर्गी ने बीबीसी से कहा,
I think that most of the Italian people that gave their vote to us,
मेरे विचार से इटली के जिन लोगों ने हमें अपना वोट दिया था वे अब और अधिक प्रवासियों को नहीं चाहते क्योंकि वे जानते हैं कि यह समस्या यूं ही चलती रहेगी। प्रवासियों को लगता है कि यहाँ कोई जन्नत है जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये थे इटली की सत्ताधारी लीग पार्टी के सदस्य क्लॉडियो बॉर्गी के शब्द। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूरोप में उभर रहे प्रवासी संकट के पीछे राजनीतिक हल की कमी को बड़ी वजह बताया है। पेरिस में एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि प्रवासी समस्या असल में उनकी संख्या नहीं बल्कि राजनीतिक तरीके से इसका हल नहीं निकालना है। इमैनुअल मैक्रों ने कहा,
Mais ce que nous souhaitons, c'est de pouvoir gérer les choses non pas au cas par cas.
हमें इस वक्त हर मसले को अलग अलग करके देखने की जरूरत नहीं है। हमें इस समस्या को एकजुट होकर सुलझाना होगा। हमें इस मुद्दे पर चर्चा करनी होगी और मानवतापूर्ण रास्तों से इनका हल खोजना होगा। ये थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के शब्द। यूरोप में मौजूद अवैध प्रवासियों के संबंध में आज यूरोपीय संघ में एक सम्मेलन का आयोजन होगा जिसमें इस समस्या का हल निकालने पर विचार किया जाएगा।
बीच सागर में मदद की आस लगाए 226 प्रवासी। श्रोताओं रुख करते हैं भारत का। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हाल में अपने एक आदेश में राज्य की सभी नदियों पर होने वाली रिवर राफ्टिंग और अन्य साहसिक खेलों के साथ ही पैराग्लाइडिंग पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध आज से लागू हो जाएगा। जब तक इन खेलों के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार कोई ठोस नीति नहीं बना देती तब तक के लिए प्रतिबंध लगा रहेगा। अदालत के इस आदेश ने उन सैलानियों की भी चिंताएं बढ़ा दी हैं जिन्होंने अपनी गर्मी की छुट्टियों के लिए पहले से इनकी बुकिंग कराई थी। साथ ही इन एडवेंचर स्पोर्ट्स के कारोबार से जुड़े लोगों की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। सुनिए देहरादून से हमारे सहयोगी रोहित जोशी की रिपोर्ट।
तेज आग उगलते सूरज से राहत पाने, रिवर राफ्टिंग और दूसरे साहसिक खेलों के जिन शौकीनों ने इस वीकेंड उत्तराखंड का रुख किया उन्हें मायूसी हाथ लगी। हरियाणा के झज्जर जिले से सैकड़ों किलोमीटर ड्राइव कर राफ्टिंग करने ऋषिकेश पहुंचे विकास सोरान राफ्टिंग ना कर पाने के कारण काफी मायूस दिखाई दिए।
टूरिस्ट आ रहे हैं, कोई 1000 किलोमीटर से आ रहा है, कोई 500 किलोमीटर से आ रहा है। आने के बाद बोल रहे हैं कि राफ्टिंग बंद हो गई। या तो पहले नोटिफिकेशन जारी करनी चाहिए अभी। आप इतने टूरिस्ट, इतने परेशान हैं हम।
विकास की तरह ही सैकड़ों लोगों को टूर ऑपरेटर्स को इसी तरह मना करना पड़ा। यह इसलिए हुआ क्योंकि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पिछले दिनों अपने एक आदेश में राज्य की सभी नदियों पर चलने वाले व्हाइट रिवर राफ्टिंग और अन्य साहसिक खेलों के साथ ही पैराग्लाइडिंग पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। जब तक इन खेलों के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार कोई नीति नहीं बना लेती तब तक के लिए यह प्रतिबंध जारी रहेगा। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह 2 हफ्तों के भीतर इस संबंध में एक पारदर्शी नीति बनाए। ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग करवाने वाली एजेंसियों के एक संगठन उत्तरांचल फाइनेस्ट आउटडोर यानी UFO के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह रावत बताते हैं,
तो वैसे कम से कम जो है गवर्नमेंट आती कंपनी है तो सब कंपनियों में 100-150 लोगों की बुकिंग रहती है हर वीकेंड, तो इतने लोगों के पैसे वापस करे।
रिवर राफ्टिंग करवाने वाली एक एजेंसी रिद्धि सिद्धि राफ्टिंग्स के मालिक प्रदीप बॉबी कहते हैं कि इससे हजारों लोगों का रोजगार प्रभावित होगा।
सर 10,000 परिवार इसमें जुड़े हुए हैं, 4 जिलों के लोग जुड़े हुए हैं इसमें। उत्तराखंड में कोई एक चीज बता दीजिए जिसकी वजह से उत्तराखंड में है, या तो यहाँ पे आपको सेना में लोग मिलेंगे और या फिर यहाँ से पलायन हो रहा है, पलायन की वजह यही है क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि पर्यटन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए लेकिन उसे नियंत्रित किए जाने की भी जरूरत है। मौज मस्ती के इन खेलों का एक त्रासदी पूर्ण अंत हो इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती, लेकिन प्रदीप बॉबी का मानना है कि एडवेंचर टूरिज्म के साथ जोखिम हमेशा जुड़ा रहता है।
ये एडवेंचर स्पोर्ट है, पूरी दुनिया में एडवेंचर स्पोर्ट में रिस्क होता है, पर सिर्फ ये होता है कि आप उस रिस्क को किस हिसाब से लेते हैं।
इधर कोर्ट के इस आदेश पर उत्तराखंड के पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर भी कहते हैं कि राफ्टिंग के संबंध में पहले से ही एक नियमावली है।
राफ्टिंग और कयाकिंग की जो है वो नियमावली 2014 से हमारे यहाँ पर संचालित है।
अच्छा।
तो उसमें कोई इशू नहीं है, वो ऑनरेबल कोर्ट की केवल संज्ञान में ले आना है बात को। जहाँ तक आपका वाटर अदर वाटर स्पोर्ट्स की और पैराग्लाइडिंग की है, वो हमारी फाइनल स्टेजेस में है, हम लोगों का उसका लीगल वेटिंग करा रहे हैं हम लोग।
हालांकि हाईकोर्ट का ताजा आदेश उत्तराखंड की नदियों और पर्यावरण की सेहत का ख्याल रखने के साथ ही यहाँ होने वाले साहसिक खेलों को और सुरक्षित बनाने के मकसद से आया है, लेकिन गर्मियों की छुट्टियों के पीक सीजन में इसने पर्यटकों और टूर ऑपरेटर्स को मायूस किया है। उत्तराखंड से बीबीसी के लिए रोहित जोशी।
आज से उत्तराखंड में एडवेंचर स्पोर्ट्स पर लागू होगा प्रतिबंध। रिपोर्ट सुना रहे थे रोहित जोशी। झारखंड के खूंटी जिले में 5 युवतियों से गैंगरेप के बाद लोग सकते में हैं। पुलिस ने इस मामले में एक ईसाई मिशनरी स्कूल के प्रिंसिपल समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने भी कल खूंटी जाकर इस मामले की तहकीकात की। इस बीच झारखंड पुलिस ने दावा किया है कि इस गैंगरेप में शामिल लोग पत्थलगड़ी समर्थक आदिवासी हैं, जबकि कोचांग गांव के लोगों ने पुलिस की थ्योरी को मनगढ़ंत बताया है। पुलिस की प्रिंसिपल की गिरफ्तारी को लेकर लोगों में काफी नाराजगी है। खूंटी के कोचांग गांव से रवि प्रकाश की रिपोर्ट।
खूंटी जिले के कोचांग गांव पहुंचने के लिए मुझे वेस्ट सिंहभूम जिले के बंदगांव जाना पड़ा, क्योंकि खूंटी से अड़की होकर कोचांग पहुंचाने वाली सड़क काफी खराब है, इससे लोगों का आवागमन नहीं के बराबर है। बंदगांव से पहाड़ों का सीना चीरती एक पतली सी सड़क पर कभी सीधी चढ़ाई तो कभी वैसे ही ढलान पर चलते हुए मैं कोचांग पहुंचा। शाम होने लगी थी। वहां लगे बाजार में कुछ दर्जन लोगों की भीड़ थी। सामने हरे रंग के पत्थर पर भारत के संविधान के हवाले से कुछ बातें लिखी थीं। गांव के लोगों के लिए स्वशासन की पत्थलगड़ी है। कोचांग चौक से एक कच्ची और ऊबर खाबर सड़क मुझे उस मिशन स्कूल तक ले गई जहां नाटक करने गई 5 आदिवासी युवतियों का पिछले दिनों अपहरण कर गैंगरेप किया गया था। यहां मेरी मुलाकात मार्टिन सोए से हुई। वे नाटक के वक्त स्कूल के पास मौजूद थे। मार्टिन सोए ने बीबीसी से कहा,
उसके बारे में ये बात है, पहले तो हुआ है मतलब बदमाश लोग आया है, वो लोग हम लोग पता नहीं चला, उस जो बदमाश जो आए थे पता नहीं कौन रास्ता से इसको काबू कर लिया, क्या तरीके से उसको पकड़ लिया, अच्छी क्या गलती है हम लोग भी नहीं पाए।
मार्टिन से मेरी बातचीत के दौरान इलाके के विधायक पॉलुस सोरेन भी वहां पहुंचे। उन्होंने बीबीसी से कहा,
इस प्रकार से यहां पर मीडिया और पुलिस प्रशासन सीधे तौर पर ये घटना को पत्थलगड़ी पर आरोप लगा रहा है, इसके साथ जोड़ करके यहाँ के पादरियों पर केस किया जा रहा है और यहाँ चर्च को बदनाम कर रहा है।
मैंने स्कूल परिसर से सटे हॉस्टल के अंदर जाने की इजाजत मांगी लेकिन गेट नहीं खुला। कैंपस में मुझे कुछ ननें दिखीं जो हमें देखते ही कमरे के अंदर चली गईं। बहुत अनुरोध पर गेट तक आई एक महिला ने हमें वापस जाने को बोला और कहा कि इस मुद्दे पर सिस्टर आपसे बात नहीं करेंगी। कोचांग चौक पर मौजूद लोग भी इस बात से नाराज दिखे कि पुलिस पत्थरगड़ी समर्थकों पर झूठे आरोप लगा रही है। एक युवक ने फोन पर शंकर महली से मेरी बात कराई, वे पत्थलगड़ी आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ता है। शंकर महली ने कहा,
हम लोग जो है स्वशासन व्यवस्था का मांग कर रहे हैं, इस तरह का हम लोग का कोई हरकत नहीं है। सरकार उसे हम लोगों को क्या संज्ञा दे रही है, कभी नक्सली बता रहे, कभी अफीम की खेती, कभी रेपिस्ट, कभी क्या क्या।
अब अंधेरा होने लगा था। मैं वापस खूंटी पहुंचा तो मेरी मुलाकात लक्ष्मी बाखला से हुई। नाटक मंडली में शामिल लोगों ने सबसे पहले उन्हें ही इस घटना की सूचना दी थी। लक्ष्मी बाखला ने बीबीसी से कहा,
19 तारीख के शाम को करीब 7-8 बजे कॉल आया हमको, जिनके साथ ये घटना हुआ उनका कॉल आया। वो काफ़ी घबराए हुए थे, सारा घटना की जानकारी दी कि वो ऐसे उनके साथ हुआ है, पर वो किसी के पास जाने से भी घबरा रहे थे। फिर डायरेक्ट ADG के पास ये न्यूज़ पहुंचा, मतलब उनको बताया गया, वो SP को फ़ोन किए, उसके बाद SP हमको फ़ोन किए।
लक्ष्मी बाखला से मेरी बातचीत के वक्त वही युवक भी मौजूद रहे जिनका उन युवतियों के साथ अपहरण कर लिया गया था। हालांकि उन्होंने अपनी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं कराई क्योंकि उन्हें डर था कि लोग उनकी आवाज़ पहचान लेंगे। इस बीच महिला आयोग की टीम भी खूंटी पहुंची, लेकिन यह नहीं बताया कि उनकी मुलाकात पीड़िताओं से हो सकी है या नहीं। इधर झारखंड पुलिस ने कल 3 लोगों को गिरफ्तार कर दावा किया कि इस गैंगरेप का मास्टरमाइंड एक पत्थलगड़ी समर्थक है। हालांकि पुलिस की इस कहानी पर इलाके के बहुतेरे लोगों को यकीन नहीं है। रवि प्रकाश, BBC के लिए खूंटी में।
खूंटी जिले में गैंगरेप मामले पर पुलिस की कार्रवाई के तरीके पर लोगों की नाराजगी। रिपोर्ट सुना रहे थे रवि प्रकाश। अब सीधे रुख करते हैं पूर्वोत्तर भारत के असम राज्य का, जहां राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी NRC को अपडेट करने को लेकर विवाद जारी है। इसे अपडेट करने के दौरान बंगाली मुसलमानों के साथ भेदभाव किए जाने के आरोप लग रहे हैं। इस मामले पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संस्था द्वारा नियुक्त की गई 4 लोगों की टीम ने चिंता जताई है और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को पत्र भी लिखा है। गुवाहाटी से दिलीप कुमार शर्मा की रिपोर्ट।
असम में खासकर बंगाली मुसलमानों का आरोप है कि नागरिकता से संबंधित दस्तावेजों की ठीक से जांच करने की बजाय पुलिस उनका नाम जबरन फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में भेजने का प्रयास कर रही है। दरअसल असम देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां NRC को अपडेट करने का काम चल रहा है। आज़ादी के बाद पहली बार 1951 में NRC तैयार की गई थी। असम में अपडेट की जा रही NRC का फाइनल ड्राफ्ट इसी महीने 30 जून को प्रकाशित करने की बात है, लेकिन राज्य में आई बाढ़ की वजह से ये तारीख आगे खिसकाने की चर्चा भी हो रही है। NRC वेरिफिकेशन की दिक्कतों से गुजर रहे साल 2009 में भारतीय वायुसेना से रिटायर हुए असम के सादुल्ला अहमद ने BBC से कहा,
इसी वजह से मेरा फैमिली परेशान है, मेरा बच्चा परेशान है, मैं परेशान हूँ। मैं तो कानून का साथ मतलब साथ देने वाला हूँ। इनको एक इच्छा है हमको जबरदस्ती फॉरन में भेजने के लिए। जो मैं भारतीय नागरिक हूँ और मैं एयरफोर्स में 20 साल नौकरी किया, क्योंकि मेरा ये नौकरी भारतीय वायुसेना में भारतीय होने की वजह से ही मिला है।
बीते 11 जून को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संस्था द्वारा नियुक्त 4 विशेष व्यक्तियों ने मुसलमानों के साथ कथित भेदभाव पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को जो पत्र लिखा है उसमें कहा गया है कि NRC अपडेट प्रक्रिया में असम में उन बंगाली मुसलमानों के बीच चिंता और भय को जन्म दे दिया है, जो अपनी नागरिकता साबित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज रखने के बावजूद एक विदेशी के रूप में कथित स्थिति के कारण लंबे समय से भेदभाव का शिकार होते रहे हैं। आल असम अल्पसंख्यक छात्र संघ के अध्यक्ष अजीजुर रहमान भी इस तरह के भेदभाव की बात को स्वीकारते हैं।
इसलिए डिस्क्रिमिनेशन होने का मैक्सिमम चांस है, ये पूरा 100% हमारा ये अभी डाउट हो रहा है। बहुत सारे लोगों का ऊपर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। UN से जो लेटर फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री को जो लेटर दिया है उसमें जो जो लिखा हुआ है उसमें पूरा गायस बात बोल रहा है वो लोग।
लेकिन इसका जवाब देते हुए प्रदेश BJP के वरिष्ठ नेता तथा असम वित्त निगम के अध्यक्ष विजय गुप्ता कहते हैं,
ये तो आप निश्चित मान के चलिए कि असम सरकार किसी भी नागरिक को किसी तरह से अत्याचार करने की कहीं कोई गुंजाइश सरकार की तरफ से नहीं है। जहाँ तक NRC का बात है, जो लोग इलीगल माइग्रेंट्स हैं तो उसका नाम निश्चित रूप से NRC में नहीं रहेगा।
असम में घुसपैठियों के खिलाफ लगातार 6 साल चले लंबे आंदोलन के बाद 15 अगस्त 1985 को केंद्र की राजीव गांधी सरकार और आंदोलनकारी नेताओं के बीच असम समझौता हुआ था। उसी समझौते के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में NRC अपडेट करने का काम चल रहा है। दिलीप कुमार शर्मा, BBC गुवाहाटी।
BBC हिंदी सेवा शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज, साथ ही मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिन भर।
चीन के 6 दिन के दौरे पर गए नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली और चीन के मौजूदा प्रीमियर ली के कियांग के बीच दोनों देशों को जोड़ने के लिए सड़क, रेल और हवाई मार्ग बनाने को लेकर समझौता हुआ है। इसमें तिब्बत के केरुंग से लेकर काठमांडू तक रेलवे लाइन बिछाने पर भी सहमति बनी है। चीन और नेपाल के समझौते का असर भारत पर कैसे पड़ेगा और क्या इसके तार कहीं चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना वन बेल्ट वन रोड से तो नहीं जुड़ते हैं? सुनिए बीबीसी संवाददाता मानसी दास की ये रिपोर्ट।
चीन और नेपाल को उम्मीद है कि दोनों देश सड़क, रेल और हवाई नेटवर्क से जुड़ेंगे और इस ऐतिहासिक समझौते से एक नए युग की शुरुआत होगी। चीन में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार सैबल दास गुप्ता मानते हैं कि तिब्बत के ऊपर ल्हासा तक वाली रेल लाइन को बढ़ाकर काठमांडू तक लाने की योजना है, लेकिन ये काफी कठिन और खतरनाक काम है।
ये रेल जो आएगी वो करेगी क्या? नेपाल का तो कुछ बेचना नहीं है नेपाल को चाइना में, चाइना को नेपाल में बेचा है तो फायदा किसे मिलेगा? नेपाल को ये बात भी सोचनी पड़ेगी। मान लो ये रेल लाइन फिर आगे चल के काठमांडू से भारत के बॉर्डर तक आ जाता है, चीन का माल भारत के दरवाजे पे आके खड़ा होगा, क्योंकि चीन अगर नेपाल को बेच रही है इससे बड़ी हंसने वाली बात नहीं है। बड़ा मशीनरी चीन से खरीदना कौन है? तो सिर्फ भारत ही है, चाहे वो मेडिकल गुड्स हो, बड़े बड़े इंजीनियरिंग के प्रोडक्ट्स हो, सबके सब भारत खरीदती है। तो चीन का एक ही मकसद है कि भारत के दरवाजे पर माल को ले आना।
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग वन बेल्ट वन रोड परियोजना के तहत एशिया के देशों को मध्य पूर्व से जोड़ना चाहते हैं। कई जानकार मानते हैं कि इस इनिशिएटिव से चीन सुपर पावर बनने का अपना ख्वाब पूरा करना चाहता है। चीन ने भारत से भी इसमें शामिल होने की गुजारिश की है, लेकिन भारत इससे इनकार करता रहा है। इस योजना के तहत शुरू हुई चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर परियोजना में शामिल होने से भारत ये कहते हुए इनकार कर चुका है कि इसके पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर से होकर गुजरने से उसकी संप्रभुता का उल्लंघन होता है। भारत में अगले साल आम चुनाव होने हैं। सैबल दास गुप्ता कहते हैं,
मोदी सरकार किसी भी हालत में बेल्ट एंड रोड को सपोर्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि सॉवरेनिटी का या देश के अखंडता का सिद्धांत आ जाता है। तो ये जो अखंडता वाला प्रिंसिपल है, इसे अगर कुर्बानी दे दे भारत, तो इसका चुनाव में बिल्कुल मुंह की खानी पड़ेगी। ऑपोजिशन को बहुत बड़ा मौका मिल जाएगा और मोदी सरकार ये कभी नहीं करेगी।
सैबल दास गुप्ता कहते हैं कि चीन बहुत बड़ा जुआ खेल रही है और उसे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में सरकार शायद इसे स्वीकृति दे दे। वो सीधे सरकार पर दबाव डालने की बजाय भारत के व्यापारियों को फायदा पहुंचाने वाले काम के जरिए उन पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। वहीं नेपाल से वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमरे बताते हैं कि बीते साल इस बात पर सहमति बन गई थी कि नेपाल चीन के वन बेल्ट वन रोड परियोजना का हिस्सा बनेगा, लेकिन इसके तहत कौन से प्रोजेक्ट किए जाएंगे इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है।
बार बार नेपाल ने ऑफिशियल पोजीशन लिया है कि नेपाल इंडिया और चाइना के वाइटल इंटरेस्ट है, उनके प्रतिकूल कोई काम नहीं करेगा। तिब्बत के साथ नेपाल के 16 डिस्ट्रिक्ट का सीमाना जुटता है, इसलिए उसको कनेक्ट किए बिना डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है वहाँ के एरिया को।
युवराज घिमिरे बताते हैं कि चीन के स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत और नेपाल के बीच 1960 के दशक में चीन के सहयोग से कोदारी राजमार्ग बना था। 2015 में देश का नया संविधान बना और उस वक्त मधेशी मामलों को लेकर भारत ने नेपाल पर आर्थिक नाकेबंदी लगा दी थी। इसके बाद से नेपाल और भारत के बीच तनाव बढ़ा और नेपाल को ये लगने लगा कि केवल भारत पर निर्भर रहना उसे काफी मुश्किल स्थिति में डाल सकता है और चीन के साथ उसके संबंध बढ़ाना उसे लाजमी ही लगा। हालांकि युवराज खिमरे मानते हैं कि रेलवे लाइन बनने के बाद चीन का सामान भारत आएगा ऐसा जरूरी नहीं है।
जो रेलवे का प्लान है वो काठमांडू तक ही आना है भी। इसी बीच इंडिया ने भी रक्सौल से वहां से काठमांडू तक रेलवे लाइन बिछाने का ऐलान किया है और 5 साल में तैयार करने की घोषणा इंडिया ने किया है। ये जरूर है कि बॉर्डर स्ट्रीमलाइनिंग जो बार बार दो पक्षीय अधिकारी जब बैठते हैं तो उनका एक चिंता रहता है कि बॉर्डर में जो स्मगलिंग है उसको रेगुलेट करना है, सब मेजर्स अपनाने पड़ेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इससे स्मगलिंग को बढ़ावा देगा। बेसिकली ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन के लिए है।
अब तक भारत ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होने से इनकार किया है, लेकिन चीन भी इस पर चुप नहीं रहा है और वो भारत के सभी पड़ोसियों के साथ संबंध बेहतर बनाने की पूरी कोशिशें कर रहा है। ऐसे में क्या वाकई चीन भारत पर दबाव बना पाएगा? मानसी दास, बीबीसी दिल्ली।
चीन और नेपाल के बीच विभिन्न समझौतों से भारत पर पड़ने वाले प्रभावों से जुड़ी रिपोर्ट पेश कर रही थी मानसी दास। और अब जान लेते हैं आज दिल्ली से छपने वाले आज के अखबारों में क्या कुछ खास है। बताएं नवीन, क्या है आज के अखबारों में खास?
जी शाहिद, आज दिल्ली से प्रकाशित तमाम समाचार पत्रों में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के एक बयान को बड़ी प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है, जिसमें उन्होंने पीडीपी सरकार पर आरोप लगाए कि उन्होंने जम्मू और लद्दाख के क्षेत्र में भेदभाव किया था।
अच्छा।
इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि जम्मू कश्मीर की सरकार से अलग होने के 4 दिन बाद ही बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पीडीपी प्रमुख और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती पर इलाके में भेदभाव करने के आरोप लगाए हैं। अमित शाह जो हैं वो जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की याद में एक कार्यक्रम जम्मू में आयोजित हुआ था, उसमें बोल रहे थे और उसमें उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख उमर अब्दुल्ला के परिवारों ने राज्य के लोगों की कीमत पर संपत्ति अर्जित की है। दूसरी खबरों की तरफ बढ़ें तो पाकिस्तानी अधिकारियों ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया को गुरुद्वारा पंजा साहिब जाने से रोक दिया, ऐसी खबर हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित की गई है और अखबार लिखता है कि ऐसा 3 महीने में दूसरी बार किया गया है। खबर में बताया गया है कि उच्चायुक्त अजय बिसारिया अपनी पत्नी और पाकिस्तान स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास के अधिकारी के साथ वहां के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी अनुमति पत्र लेकर गुरुद्वारा पहुंचे थे, लेकिन वहां मौजूद सुरक्षा बलों ने उन्हें उनके वाहनों से उतरने ही नहीं दिया। कई अखबारों में शाहिद झारखंड के नक्सल प्रभावित खूंटी जिले में 5 युवतियों के साथ जो सामूहिक बलात्कार से जुड़ी खबर है,
उसकी अभी हमने रवि प्रकाश जी की रिपोर्ट सुनी।
जी शाहिद, और जनसत्ता ने इसमें लिखा है कि इसमें जो 2 प्राथमिकियां दर्ज की गई थी उसमें एक पादरी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
हमारी रिपोर्ट में भी यही था। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन नेगी अखबारों की समीक्षा के लिए। फुटबॉल विश्व कप में कल जर्मनी ने स्वीडन को 2-1 से हरा दिया। आज ग्रुप एच के मैचों में जापान का मुकाबला सेनेगल और पोलैंड का कोलंबिया से होगा, वहीं इंग्लैंड पनामा से भिड़ेगा। अन्य खेल की खबरें सुनते हैं खेल समाचारों में।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट के बढ़ते और चढ़ते पारे के बीच कल से नीदरलैंड्स में 37वीं और आखिरी पुरुष हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 4-0 से हराकर दमदार और शानदार आगाज किया। भारत ने खेल के 26वें मिनट में रमनदीप सिंह के गोल की बदौलत अपना खाता खोला और उसके बाद 54वें मिनट में भारत के पक्ष में गूंजते नारों के बीच दिलप्रीत सिंह ने पाकिस्तान का तख्ता खड़खड़ाकर स्कोर 2-0 कर दिया।
Gives India a 2-0 lead.
और इसके बाद तो जैसे भारतीय खिलाड़ियों में नई जान आ गई। ठीक 3 मिनट बाद ही मद्दीप सिंह और खेल समाप्त होने की सीटी बजने से पहले 60वें मिनट में ललित उपाध्याय ने भी पाकिस्तानी रक्षा पंक्ति और गोलकीपर इमरान बट को छकाकर अंततः भारत को 4-0 से जीत दिला दी। और जब पहले ही मुकाबले में वो भी चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी बड़ी जीत मिले तो क्यों ना खुश हो भारत के मनदीप सिंह।
वी वन द फर्स्ट मैच सो आई एम सो हैप्पी, वी मेक 4 गोल्स इज रियली गुड।
अब आज भारत का सामना अर्जेंटीना से होगा। अर्जेंटीना ने भी कल मेजबान नीदरलैंड्स को 2-1 से हरा कर जीत के साथ आगाज किया। उधर रूस में जारी फीफा विश्व कप में कल ग्रुप जी में बेल्जियम ने ट्यूनिशिया को 5-2 से करारी मात दी और लगातार दूसरी जीत हासिल करते हुए अगले दौर में भी अपनी जगह पक्की कर ली। बेल्जियम के लिए लुकाकू और हैजर्ड ने 2-2 गोल किए जबकि बेर्शुआई ने खेल के आखिरी मिनट में गोल किया। कल ही ग्रुप एफ में मेक्सिको ने कड़े संघर्ष के बाद दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराया। खेल के 26वें मिनट में मेक्सिको को पेनल्टी मिली जिस पर कार्लोस ने अपने लेफ्ट फुटर से बॉल को विरोधी गोलकीपर के बाईं ओर जाल में उलझाने में कोई गलती नहीं की।
What is to be Carlos Vela's fate here against Jo Hyun-woo? And Vela scores here in Rostov on Don and Mexico are in front at this World Cup again. And good value for it.
मैच का दूसरा गोल हर्नांडेज ने खेल के 66वें मिनट में किया। दक्षिण कोरिया ने अंतिम क्षणों में गोल कर स्कोर 2-1 किया लेकिन तब तक देर हो चुकी थी।
चलते चलते एक बार फिर मुख्य समाचार नवीन नेगी से।
बीबीसी समाचार। प्रवासियों को लेकर जा रहे जहाज द लाइफलाइन को प्रवेश देने के मामले में माल्टा ने इटली को जवाब देते हुए कहा कि इटली उन्हें निर्देश नहीं दे सकता। जिम्बाब्वे में एक चुनावी रैली के दौरान राष्ट्रपति इमरसन मननगागवा के नज़दीक हुआ धमाका, धमाके में उपराष्ट्रपति घायल हुए। इथोपिया के प्रधानमंत्री एबी अहमद की रैली में हुए ग्रेनेड हमले के सिलसिले में पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रवासियों के मसले पर अपनी नीतियों पर यह कहते हुए बचाव किया कि इससे अमरीका और अधिक मजबूत होगा। सीरिया में मौजूद कार्यकर्ताओं का कहना है कि पिछले साल हुई युद्ध विराम संधि के बाद पहली बार देश में दक्षिण पश्चिम इलाके में रूसी जेटों ने बम बरसाए। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे अजीत सारथी। कार्यक्रम को फेसबुक के जरिए आप तक पहुंचाया मीना कोटवाल ने। आपसे अगली मुलाकात दिन भर में शाम 7:30 बजे होगी। तब तक देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com के साथ। मोहम्मद शाहिद को समस्त सहयोगियों के साथ दें अनुमति। नमस्कार।